بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کل عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرقل کا قیصر کا قاصد آتا ہے تو اس کے صاحب نے قیصر نے کیا کیا باتیں اسے فرمائی سب یہاں پتہ ہے، اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد دلا کر وہ تینوں کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ تو تبوک میں تھے، اور شام میں کیا ہو رہا ہے، کیا گفتگو، وہ دیکھ لی ہوگی یا سن لی ہوگی، یا حق تعالی شانہ کی طرف سے اطلاع کر دی گئی ہوگی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کچھ ابتدائی نبوت کا حال بیان فرمائیں گے، اور ایک سائل کا سوال بھی مذکور ہے، یہ تو مجمل ہے کہ ابتدائی نبوت کا حال، کہ ایک سوال اس طرح بھی ہے کہ متى وجبت لك النبوة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پرانی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آدم منجدل بین الماء والطین، کہ اس وقت سے جب کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے گارے میں تھے، یہ آج کل علم کا زور ہے، علم کا حصول بہت آسان کر دیا گیا، کسی زمانے میں ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا تب جا کر کہیں ایک کلمہ انہیں حاصل ہوتا تھا، اور اس وقت بس طلب کرنے والا چاہیے، ڈھونڈنے والا چاہیے، شوق چاہیے، رغبت چاہیے، تو کیا دینی علم، کیا دنیاوی، ہر چیز کے پہاڑ آپ کے سامنے ہے کہ آپ تھک جائیں پڑھتے پڑھتے اور حاصل کرتے کرتے۔ تو یہ جو جہاں اس کی خوبیاں ہیں اس ترقی کی، وہاں اس کی مضرتیں بھی ہیں۔ ابھی آخری مرتبہ لندن جب جانا ہوا تھا تو اس وقت سن کر بڑا دکھ ہوا کہ کسی صاحب علم کے بیٹے کو یہ خط ہو گیا کہ آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد نہیں ہیں بلکہ وہ گوریلا جد امجد۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہماری حقیقت اور اصلیت بیان فرما دی، وہ آدم منجدل بین الماء والطین، کہ حق تعالی شانہ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ مٹی لاؤ۔ تو یہ پوری کائنات خالق اور مخلوق کے ساتھ ایک گھر کی طرح، ایک گھر میں باتیں ہوتی ہیں، تو کبھی سمجھدار بچے ہوتے ہیں تو والدین انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں ادھر ادھر راز کی بات بتا دے گا۔ تو یہ پوری کائنات ایک گھر کی طرح سے ہے۔ تو وہ جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو ملائکہ نے پوچھا اتجعل فيها من يفسد فيها، تو وہ ساری کائنات کو پتا کہ یہ مکالمہ ہوا ہے رب اور مخلوق کے درمیان، رب کے درمیان، ملائکہ کے درمیان۔ تو جب جبریل امین کو حکم ہوا کہ مٹی لائیے आदम का गारा बनाना है तो मिट्टी जिब्रील अमीन से फरियाद करती है कि हमसे ऐसी मखलूक तैयार होगी जो खुदा की नाफरमान होगी और उसका हशर ये होगा कि जहन्नम रसीद होंगी तो हमसे जो जिस्म बनेगा हमारे गारे से तो वो अमल वो करेंगे और हमें सहज जहन्नम में जलना होगा। तो मिट्टी को भी पता कि आदम मिट्टी से बने और ये सारी कायनात सारी इंसानियत हज़रत आदम अला नबीना वाले सलात वसलाम के रिश्ते में है। ये हज़रत आदम अला नबीना वाले सलात वसलाम का क़िस्सा हम बहुत सुनते हैं मगर हमें इस पर गौर भी करना चाहिए कि हज़रत आदम अला नबीना वाले सलात वसलाम को के किस्से में हमारे लिए बड़े असबाक हैं कि हुक्म हुआ खलक़तुहु बियदैय, कितने प्यार से हक़ तआला शानुहु ने उनकी तख्लीक़ को बयान फरमाया कि मैंने मेरे दोनों हाथों से आदम को बनाया है। तो इतने प्यार से बनाने के बाद हुक्म हुआ कि अच्छा ये जन्नत इसमें रहें, अंत वज़ौजुकल जन्ना कि तुम दोनों यहाँ रहो। और उससे पहले हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का एज़ाज़ हो चुका था और इबलीस ने सजदे से इनकार कर दिया था मगर फिर भी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम अहलुल जन्नत बुलहुन के जिससे जिसने कितनी बड़ी इंसल्ट हक़ तआला शानहु के हुक्म की तो की है उसने मगर ख़ुद हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम मौजूद थे और उनसे हसद किया या उनसे तकब्बुर किया या उनसे बुग्ज़ हुआ तो इन तमाम में से जो भी किया हो तो नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। जिस तरह हक़ तआला शानहू की बारगाह में नाकाबिले मुआफ़ी, इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नज़दीक भी होना चाहिए मगर भोलपन देखिए कितना बड़ा सबक हमारे लिए। हम तो माँ और बाप का एक कलेमा नहीं सुनना चाहते। कुरान तो कहता है कि वला तो कुल्लमा उफ़, कभी उफ़ भी मत कहो। और अब यह हाल है हमारा कि एक कलेमा सुना, इंसल्ट हो गई, हमारे बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी कर दी, उसको सजा देनी होगी। तो यहाँ हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम उसी दुश्मन के जाल में आ जाते हैं, अकल शजरा खाने में। और फिर हक़ तआला शानहू की तरफ से वहाँ से जन्नत से दुनिया में भेजा जाता है। तो ये जो दुनिया में वाक़ियात पेश आते हैं इंसानों के साथ, इंसानों की तरफ से, मखलूक की तरफ से, तो हम तो छोटे से वाक़े को क़यामत से बड़ा समझ लेते हैं और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से यहाँ भेज दिया जाना और निकाल दिया जाना क्या वहाँ की नेमतें और क्या ये क़ैद खाना। मगर जो रब और मरबूब का, खालिक और मखलूक का रिश्ता रहना चाहिए था वो और मज़बूत हुआ, जो जन्नत में था उससे भी ज़्यादा मज़बूत हुआ। टूटा नहीं। टूटना तो बहुत दूर की बात है, उसमें उस रिश्ते में कोई खलल भी नहीं आया और पुख्ता हो गया। ये जो उस दिन वहाँ वाकया सुनाए थे बाटली में भी, कि वो हर वक्त सारी ज़िंदगी रोते रहते थे, अब्बा जान का सुनाया था कि एतकाफ़ में इस्तिंजे के लिए मैं घर पहुँचा तो वालिद साहब फरमाते हैं यूसुफ यहाँ बैठा, फिर फरमाया कि अल्लाह से मुलाकात के शौक़ में दुनिया भर के अवलिया अल्लाह रोते रहे रोते रहे, सारी उम्र रोते और तड़पते गुजार दी, मगर उन्हें विसाल नसीब नहीं हुआ। अल्लाह को रुलाना ही था उन्हें। तो ये जो हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने सीखा, अवलिया अल्लाह ने, कि हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को जब उतार दिया गया तो जन्नत की ज़िंदगी कितनी थी, सिर्फ 40 बरस। 40 बरस वहाँ उन्हें रखा गया और उसके बाद दुनिया में भेजा गया। तो दुनिया में भेजने के बाद हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ एक था, बस उस मौला की याद में रोना, रोते रहे रोते रहे। कहते हैं कि 200 बरस तक आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि वहाँ से हमें उतारा गया था। चलिए कल तो थोड़ी ज़रा हमने ज़्यादती कर ली थी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, दुआ कर लेते हैं आगे इंशाल्लाह कल को। अल्लाह ताला इन अपने मकबूल बंदों की तरह हमें भी उसकी ज़ात आली से ताल्लुक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।